ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ
ಸಾಮವೇದ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ
ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ
ಹಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ
ಹಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ
ಸಮವೇತ ಯುಯುತ್ಸವ
ಸಮವೇತ ಯುಯುತ್ಸವ
ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ
ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ
ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ
ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇಡ್ O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight?
Dhritarashtra ne kaha ki he Sanjay, Dharmakshetra Kurukshetra mein ekatrit hue, mere aur Panduo ke putra ek yuddha ki ichha se ekatrit the, unhone kya kiya?
Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhagavad Gita is the widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya.
Bhagavad Gita jo hai wo sabse zyada padhe jane wale Upanishad hai.
There it says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations.
त्या ठिकाणी सांगण्यात आलेले आहे की मनुष्याने भगवान कृष्णाच्या भक्त्याच्या मदतीने भगवद्गीताचे अत्यंत काळजीपूर्वक अध्ययन केले पाहिजे आणि या प्रकारे वैयक्तिक हेतुपूर्वक मत न लावता कृष्ण भक्ताकडून समजली पाहिजे.
The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself. The way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Gita directly from the Lord.
Bhagavad Gita hi kontya padatine janun ghyavi ya baddal che spasht udaharan Gita madhe ch ahe ani te mhanje Arjuna.
If someone is fortunate enough to understand Bhagavad Gita in that line of disciplic succession without motivated interpretation, then he surpasses all studies of Vedic wisdom and all scriptures of the world.
Ekada asha vyaktik hetu virahit गुरु शिष्य परंपरेमधून ज्ञान जाणून घेण्यात भगवान असले तर हे समग्र वैदिक ज्ञान तसे जगातील इतर कोणत्याही शास्त्रामध्ये न आढळणाऱ्या सर्व गोष्टी भगवद्गीतामध्ये पाहू शकेल.
One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere.
समग्र वैदिक ज्ञान तसे जगातील इतर कोणत्याही शास्त्रामध्ये आढळणाऱ्या व न आढळणाऱ्या सर्व गोष्टी एखाद्या भगवद्गीतेमध्ये पाहू शकेल.
दॅट इज द स्पेसिफिक स्टँडर्ड ऑफ द गीता.
हे भगवद्गीताचे एक दुर्मिळ वैशिष्ट्य आहे.
इट इज द परफेक्ट थिएस्टिक सायन्स बिकॉज इट इज डायरेक्टली स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण.
हे ज्ञान साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णाने सांगितल्यामुळे परिपूर्ण असे आस्तिकवादी विज्ञान आहे.
The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya, as described in the Mahabharata, form the basic principle of this great philosophy.
Mahabharata varnalela Dhritarashtra ani Sanjay yani keleli charcha hi ya shreshtha tatva gyanacha mulbhut aadhar ahe.
It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age.
Puratan Vedic kalapasun pavitra teertha sthal asnarya Kurukshetra ya tikani Gita madhil tatva gyan sangnet alyache aapyala samjun yete.
It was spoken by the Lord when he was present personally on the planet for the guidance of mankind.
जेव्हा स्वतः भगवंत या पृथ्वी तलावर होते तेव्हा त्यांनी मानव समाजाच्या मार्गदर्शन करिता हे ज्ञान सांगितले.
ते वर धर्मक्षेत्र, a place where religious rituals are performed, is significant Because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna.
येथे धर्मक्षेत्रे हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे कारण कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर पुरुषोत्तम श्री भगवान हे अर्जुनाच्या बाजूने उपस्थित होते.
Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory.
कुरुच्या पिता धृतराष्ट्र हा आपल्या पुत्रांच्या अंतिम विजयाबद्दल अत्यंत साशंक होता.
In his doubt, he inquired from his secretary Sanjay, "What did my sons and the sons of Pandu do?"
आणि संशयित असल्यामुळे त्याने आपल्या सचिव संजय याच्याकडे विचारलं की त्याने काय केले.
He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled in that field of Kurukshetra for the determined engagement of the war.
पूर्ण निर्धारयुक्त युद्ध करण्याच्या निश्चयाने स्वतःचे आणि पांडूचे पुत्र कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर असल्याची त्याला पुरेपूर खात्री होती.
Still, his inquiry is significant.
तरी सुद्धा त्याची विचारणा महत्वपूर्ण आहे.
He did not want to a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure that the fate of his sons on the battlefield.
भावामध्ये तडजोड व्हावी अशी त्याची इच्छा नव्हती आणि त्याला युद्धभूमीवर आपल्या पुत्राच्या विधी लिखिताबद्दल निश्चितपणे जाणून घ्यायचे होते.
Because the battle was arranged to be fought in Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place and the outcome of the battle.
कुरुक्षेत्राच्या वैदिक साहित्यामध्ये स्वर्गातील देवतासाठी सुद्धा पूजनीय असे स्थान म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे आणि युद्ध हे कुरुक्षेत्रावर करण्याच्या ठरवल्याने ते पवित्र स्थान असल्यामुळे त्यांच्या युद्धातील अंतिम निर्णयावर होणाऱ्या परिणाम धृतराष्ट्र आणखी भयभीत झाला.
He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous.
याचा प्रभाव अर्जुन व इतर पांडू पुत्र हे स्वाभाविकच्या सद्गुणी असल्यामुळे त्यांना अनुकूल असाच होणार हे तो उत्तम रीतीने जाणून होता.
Sanjaya was a student of Vyas, and therefore by the mercy of Vyas, Sanjaya was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the womb of Dhritarashtra.
संजय हा व्यासांचा शिष्य होता आणि म्हणून व्यासांच्या कृपाने तो जरी धृतराष्ट्रच्या महालामध्ये होता तरी तो कुरुक्षेत्र येथील युद्धभूमी पाहू शकत होता.
And so Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield.
यासाठी धृतराष्ट्राने युद्धभूमीवरील परिस्थितीबद्दल त्याच्याकडे विचारणा केली.
Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family. But Dhritarashtra's mind is disclosed herein.
पांडव आणि धृतराष्ट्रचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचे अंतर्मन उघडे करून दाखवण्यात आले आहे.
He deliberately claimed only his sons as Kurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage.
त्याने मुद्दाम आपल्या पुत्रांच्या कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि पांडू पुत्रांना कुळाच्या वारस हक्कातून वगळले.
One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu.
यावरून कोणत्याही धृतराष्ट्र आपल्या पुत्रास म्हणजे पांडू पुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो.
As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others would be wiped out, and thoroughly religious persons headed by Yudhisthira would be established by the Lord.
प्रारंभिक केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतामधून अनावश्यक कत्र्यण काढून टाकले जाते त्याप्रमाणे धर्मपालक भगवान श्री कृष्णाच्या उपस्थित कुरुक्षेत्रावर तृणवत असा धृतराष्ट्राच्या पुत्रासहित इतर सर्वांच्या समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीची लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करतील.
This is the significance of the words Dharmakshetre, Kurukshetre, apart from their historical and Vedic importance.
Dharmakshetre va Kurukshetre ya shabdana aitihasik mahatva barobar he hi vishesh mahatva ahe.
Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do? being desirous to fight.
धृतराष्ट्र म्हणाला हे संजय कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्री एकत्रित झाल्यावर युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले.
We have come to Jyotisar.
आम्ही या ज्योतिसर पर आए हैं.
The place where Sri Bhagavad Gita was spoken for the benefit of all humanity.
सारी मानवता के कल्याण के लिए यहाँ पर भगवद गीता बोली गई थी.
The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna descended into this world to teach the path of perfection.
भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए ये धर्म का मार्ग दिखाने के लिए.
And the essence of those teachings is spoken right in this place under this immortal banyan tree in Kurukshetra.
और उनकी शिक्षा का जो सार है वो इसी वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र में बोला गया था.
The Bhagavad Gita is 18 chapters within the great literary work of Srila Vyasadeva called Mahabharata.
Srila Vyasadeva के रचित साहित्य महाभारत के बीच में ये 18 अध्याय का भगवद गीता है.
It is described by the acharyas that Bhagavad Gita is like a cow.
आचार्य बताते हैं कि भगवद गीता एक गाय के समान है.
Krishna is Gopa, a cowherd boy.
कृष्ण ग्वाले हैं.
And Arjuna is like the calf.
अर्जुन बछड़े के समान है.
Krishna as cowherd boy is extracting the milk from the cow of Gita, which is the very essence of all Vedic knowledge.
कृष्ण ग्वाले के रूप में जो है ये दूध निकाल रहे हैं गीता के रूप में जो कि वैदिक साहित्य का सार है.
And Arjuna is achieving the nourishment of transcendental knowledge.
और अर्जुन जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं.
Arjuna was the dear and intimate Lord friend of Lord Sri Krishna.
अर्जुन जो है वो कृष्ण के परम मित्र थे.
One of the five Pandavas.
और पांच पांडवों में से एक है.
Mahabharata describes how Pandavas were the rightful heirs to the throne of the world.
Mahabharata में बताया गया है कि पांडव वास्तव में जो है वो राजगद्दी के अधिकारी थे.
But in this material world, envy is the basic principle that motivates people.
लेकिन इस भौतिक जगत में ईर्ष्या जो है वो एक चीज है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है.
Everything is the property of God.
सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है.
भोक्ता राम जगत तपसं सर्वलोक महेश्वरं सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छत. Gita tells us we can achieve peace when we simply recognize and put into practice that Krishna is the proprietor of everything.
गीता हमें समझाती है कि कृष्ण ही सब चीजों के मालिक है. ये बात को हमें समझना है और उसको व्यवहार में डालना है.
All that exists is meant for his satisfaction.
जब सब कुछ जो है वो उनके संतुष्टि के लिए है.
And he is the true well-wishing friend of all living beings.
वो सबके सच्चे हितैषी मित्र हैं.
But we remain in this world because we are envious of God.
हम इस दुनिया में इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते हैं.
We want to be the proprietor.
हम मालिक बनना चाहते हैं.
We want to be the enjoyer.
हम भोक्ता बनना चाहते हैं.
And we want to feel that I am the benefactor of others.
और हम सोचना चाहते हैं कि मैं दूसरों का हितैषी हूँ.
Of course, in our conditioned state, Lord Sri Krishna is very, very far from our consciousness.
बद्ध अवस्था में कृष्णा हमारी चेतना से बहुत दूर हैं.
So therefore, since it's difficult to be directly envious of God, we are envious of his part and parcels who are having something beyond what we have control.
और क्योंकि हम भगवान को पास में नहीं देख रहे इसलिए हम उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो भगवान के अंश हैं.
Because by nature we are envious of Krishna, we are potentially envious of any one of his parts and parcels.
क्योंकि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं इसलिए हम कृष्ण के हर एक अंश से ईर्ष्या करने लगते हैं.
Today in our society there is very great conflict.
आज हमारे समाज में बहुत संघर्ष होता है.
Political conflict.
राजनीतिक संघर्ष.
Because different classes of people in different categories are claiming that this land belongs to me.
क्योंकि अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग स्थान में बोलते हैं यह भूमि मेरी है.
But somebody else wants what you have.
और जो आपके पास है वो कोई दूसरा व्यक्ति चाहता है.
The history of the world is a history of wars.
अगर दुनिया के इतिहास देखें तो वो युद्धों का इतिहास है.
Violence, bloodshed and death.
हम देखते हैं कि खून बहता है, लड़ाई होती है और अंत में जो है मृत्यु होती.
Because people are not willing to recognize that everything is Krishna.
क्योंकि लोग ये बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि सब कुछ कृष्ण का है.
Why don't we use everything according to Krishna's direction instead of according to our concoction?
क्यों नहीं उन सब चीजों को कृष्ण की इच्छा के अनुसार उपयोग करें बजाय इसके कि अपने स्वयं की इच्छाओं के अनुसार.
Economically, there's terrible conflict.
आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष है.
Because people are thinking in terms of I and mine.
क्योंकि लोग सोचते हैं ये मैं और मेरा.
I am this body.
मैं ये शरीर हूँ.
And whatever is in relation to this body is mine.
ये शरीर से संबंधित है वो मेरा है.
These two misconceptions are the very basic principles of material bondage.
और ये सब चीजें जो है भौतिक संघर्ष के सिद्धांत है.
People want to accumulate more and more and more.
लोग और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना चाहते हैं.
And for this purpose we create a artificial status in society of finance and economy.
और इसलिए हम कृत्रिम समाज बनाते हैं जो कि आर्थिक विकास के लिए है.
And there's inflation.
और फिर चीजों के दाम बढ़ते हैं.
And there's regression and deflation.
और फिर कम होते हैं.
And there's all sorts of terrible omens for economic collapse.
और आर्थिक नष्ट होने के बहुत से लक्षण दिखाई पड़ते हैं.
Locally and internationally.
पास में और पूरे विश्व में.
Because people want to accumulate more, 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 more.
क्योंकि लोग और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करना चाहते हैं.
And we find it creates so much hatred.
और हम देखते हैं कितनी घृणा की भावना पैदा होती है.
When the common people see that they're being exploited by the rich people, they revolt.
जब साधारण लोग देखते हैं कि अमीर लोग हमारा शोषण कर रहे हैं तो वो क्रांति कर देते हैं.
That is where communists come from.
इसलिए समाजवाद पैदा होता है.
And people are struggling so hard just to somehow or other survive materially.
और लोग संघर्ष कर रहे हैं इतना ज्यादा सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए.
But the residents of Vrindavan, we don't see that they're struggling so hard just to survive.
हम देखते हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो कोई इतना संघर्ष नहीं कर रहे अपना पालन करने के लिए.
Because they have no envy.
क्योंकि उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है.
They're living in harmony with the will of God.
भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं.
Therefore they're happily doing their occupation and everything is being provided.
और वो अपना सारा कार्य करते हैं और सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है.
So on every level, envy is there within our heart.
और हर स्तर पर हमारे हृदय में ईर्ष्या है.
And Duryodhana, as well as his 99 brothers, were victims of this envy.
और दुर्योधन और उसके 99 भाई इस ईर्ष्या के गुलाम हैं.
He was thinking, Pandavas, they are going to inherit the throne. What about me?
वो सोच रहे थे कि पांडु के पुत्र जो राजा बनेंगे कि मेरा क्या होगा.
I should be king.
मुझे राजा बनना चाहिए.
And in order to accomplish this, he committed so many terrible atrocities.
और ये प्राप्त करने के लिए उसने कितने सारे अत्याचार किए.
Duryodhana, even if he just was content being a great prince, he would have been wealthier than practically any man on earth today.
अगर दुर्योधन जो राजकुमार के रूप में संतुष्ट होते तो भी आज इस दुनिया के अमीर सबसे अमीर व्यक्ति होते.
He would have been loved and protected by Yudhishthira Maharaj throughout his whole life.
और युधिष्ठिर महाराज उनका पूरा जीवन भर उनका संरक्षण करते.
He would have had everything.
उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता.
And more.
और ज्यादा उससे भी ज्यादा.
But he wasn't satisfied.
लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे.
Therefore, he gave Pandavas deadly poison.
उन्होंने पांडवों को भयंकर विष दिया.
He tried to burn them alive in a house of lack.
और उनको वारणावत में अग्नि में जलाने का प्रयास किया.
He plotted and schemed with his brothers to murder the Pandavas.
और पांडवों को मारने के लिए उन्होंने भाइयों के साथ षड्यंत्र रचा.
Along with Shakuni, that infamous match of dice, he cheated the Pandavas.
और बदमाश शकुनि के साथ मिलकर उन्होंने पांडवों को धोखा दिया.
Outright low class cheating.
जो कि बिल्कुल ही तुच्छ श्रेणी का एक धोखेबाजी का मैच था.
And after this atrocity, he wanted to humiliate them.
और इतना अत्याचार करने के बाद और उनका मान भंग करना चाहते थे.
To strip their wife naked in front of men.
और उनके पत्नी को नग्न करने का प्रयास किया पुरुषों के सामने.
Taking away all their possessions.
उनका सब कुछ छीन लेने का प्रयास किया.
Banishing them to the forest for 12 years.
और 12 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया.
And even after they were banished to the forest, and he was the prince regent, the next king to be coronated after Dhritarashtra, still they were not satisfied.
और जब वो जंगल में चले गए और दुर्योधन बाद में राजकुमार हो गए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे.
They went through so many efforts to humiliate them.
और भी ज्यादा उनका अपमान करने का प्रयास किया.
Trample upon their hearts.
उनके हृदय को तोड़ दिया.
And even to kill them.
और फिर से मारने का प्रयास किया.
And toward the end of the 12 years, it was their aim to somehow or other find them and cause them to be banished for another 12 years.
और 12 वर्ष के बाद उनका उद्देश्य था कि उनको अज्ञातवास में खोज दें, जिससे फिर से उनको 12 साल के लिए वनवास में भेज दिया जाए.
How vicious the ego is when we allow it to be uncontrolled.
अगर हम अपने मिथ्याभिमान को वश नहीं करते तो कितना भयंकर सिद्ध हो सकता है.
And Pandavas, they were so pure in heart.
और पांडव हृदय से बहुत शुद्ध थे.
So content and compassionate.
और दयालु और संतुष्ट थे पूर्ण रूपेण.
युधिष्ठिर महाराज, he only asked for 5 little villages.
युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ 5 गांव मांगे.
And Kurus could take, Dhritarashtra could take everything else with his son.
और कुरु धृतराष्ट्र बाकी सब कुछ ले सकते अपने पुत्रों के साथ.
But Duryodhan could not tolerate giving them even the amount of land to put the head of a pin into.
और दुर्योधन तो बताया कि सुई के नोक के बराबर भी जगह मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ.
Therefore, by the arrangement of Lord Krishna, these demoniac people had to be removed from the earth.
और कृष्ण के इंतजाम से इन असुरों व्यक्तियों को धरती से नाश करना पड़ा.
One of my dear god brothers was explaining to me, he had done a very, very deep study of Mahabharat.
मेरे एक प्रिय गुरु भाई जिन्होंने महाभारत का बहुत अध्ययन किया, वो मुझे समझा रहे थे.
There was a time we have explained when Duryodhana, he knew the Pandavas were living like hermits in the forest.
पांडव जो है जंगल में बिल्कुल वनवासी की तरह रह रहे थे.
Duryodhana decided to have a royal procession where he's riding on the king's elephants with all the insignias of royalty, just to come by the Pandavas and look at them laying in the dirt with nothing, just to humiliate them and try to crush their hearts.
दुर्योधन के ऐसी योजना थी कि एक बार बड़े हाथी और पूरे सब सेनाओं के साथ पांडवों के पास जाना और जब वो वनवास में जमीन पर हैं तो उनके पूरा अपमान करना इस तरीके से.
But on their way to see Pandavas, one Gandharva fought against Duryodhana and his assembly of Kurus.
और रास्ते में एक गंधर्व ने जो है दुर्योधन और उनके सबके साथ युद्ध किया.
This Gandharva fought so hard that Karna and all the others had to run away for their lives.
और इतना भयंकर युद्ध किया गंधर्व ने कि कर्ण और बाकी सब लड़ाई से भाग गए.
And Duryodhana was captured like an animal.
और दुर्योधन को पशु के समान बंदी बना लिया गया.
And the Kurus had to run to the Pandu Yudhishthira Maharaj and say, "Please help us, help us."
और सब पांडव जो है पांडवों के पास पहुंचे और बोले, हमें बचाओ, मदद करो, मदद करो.
Yudhishthira Maharaj, he said to Pandavas, "Go help him."
Yudhishthira Maharaj अपने भाइयों से कहा, जाओ, मदद करो.
Bhima was very happy. Duryodhana was getting defeated.
Bhima को बस खुशी हो रही थी कि दुर्योधन पराजित हो रहा.
Let nature take its course. Let him be captured and killed. Why should we help that rascal?
वो सोचने लगे, बदमाश को हम क्यों मदद करें, उसको मरने दो.
Yudhisthira said, amongst ourselves, there are 5 and they are 100 and we may be fighting. But when some outsider attacks, we are 105 and we must stand together.
Rishi Maharaj bole, humare bich mein hum 5 hai aur aap 100 hai, lekin jab koi bahar ka vyakti aakraman karta hai, to hum sab 105 ho jate hain.
So Yudhisthira was brought, Duryodhana was brought to Yudhisthira captive.
Aur Duryodhan ko jo hai, Rishi Maharaj ke samne bandi bana ke laya gaya.
And Yudhisthira said, let him go.
Rishi ne kaha ki chhod do.
Duryodhana, why do you do like this? You should go. Duryodhana, to him, that the Pandavas saved him, and Yudhisthira showed compassion to him, made him even more envious. He was so humiliated.
He
could not tolerate it. It was such an embarrassment.
और कितनी लज्जित हो गया
that his enemy saved his life.
कि मेरे शत्रुओं ने मेरे प्राणों को बचाया.
He decided to just fast till death.
सोचा कि मैं अनशन करूंगा मृत्यु तक.
At that time, Rakshasas from lower planets.
उस समय नीचे के लोगों से राक्षस आए.
They brought him down to their planet.
उनको अपने नीचे के लोक में ले गए.
And said, Duryodhana, what are you doing?
और कहा दुर्योधन तुम क्या कर रहे हो?
You have forgotten your mission.
आपका उद्देश्य तो भूल गया.
Your mission is to spread a dharma throughout the world.
आपका उद्देश्य है पूरे दुनिया में अधर्म का प्रचार करना.
Your mission is to wipe out religion.
और धर्म को समूल नाश कर देना.
Wipe out dharma.
पूर्ण रूप से धर्म का नाश करना.
And pollute the world.
और दुनिया को प्रदूषित करना.
That is our conspiracy.
ये हमारा षड्यंत्र है.
You were sent for that purpose.
और तुमको उसके लिए भेजा गया था.
Now don't give up so easy. Go back and destroy the Pandavas.
पांडवों को नाश कर दो.
And destroy everything Yudhisthira represents.
और युधिष्ठिर इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी नाश कर दो.
And Duryodhana, due to that nice satsang, he became very much enthusiastic. Go back and persecute the Pandavas.
और इस सत्संग के बाद दुर्योधन को और शक्ति मिल गई, वापस जाकर फिर से पांडवों से लड़ाई करने.
So he was not just an envious person.
वो एक खाली ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं थे.
He had a very evil motive.
उसके बहुत बुरे इरादे भी थे.
And this is Krishna explains in Gita. हरितरामाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थाप्य नारदाय संभवामि सुखेषु. He comes to destroy the wicked.
भगवान बताते हैं कि मैं दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ.
And Bhumi Devi approached Lord Brahma in the form of a cow. She said, I cannot bear the burden of all these demoniac kings who are exploiting me.
Bhumi Devi, a guy ke roop mein Brahma ji ke paas aaya aur bataya ki main in dushton ke bojh ka nahi utha sakti.
So Brahma and the devatas prayed to Lord Vishnu to descend.
To Brahma ji aur sare devtaon ne Bhagwan Vishnu se prarthna ki prakat hone ke liye.
And Lord Vishnu spoke to Brahma.
और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से बोला,
that I will descend into this world.
मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा.
And he came as the son of Vasudev and Devaki.
और वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए.
And many of his great eternal associates also appeared with him.
और उनके कई नित्य सहचर भी उनके साथ प्रकट हुए.
As the residents of Vrindavan.
वृंदावन वासियों के रूप में.
द्वारका.
द्वारका.
मथुरा.
और मथुरा.
And many of his intimate associates like the Pandavas also.
और उसमें से कई और भी सहचर जैसे कि पांडव.
To assist him in his mission.
उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने के लिए आए.
Now we find that Lord Shri Krishna, he personally, with his own hands, killed so many of the demon rakshasas who made this conspiracy to conquer the universe.
हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से वो है इतने सारे असुरों का अंत किया.
It is explained in our shastras that the demigods were very powerful.
हमारे शास्त्र में बताया गया कि देवता बहुत शक्तिशाली थे.
What is a rakshasa?
राक्षस का अर्थ क्या होता है?
Rakshasa isn't just a human being who likes to eat humans.
Rakshasa मतलब ये नहीं कि एक मानव जो कि दूसरे मानव को खाता है.
Rakshasas are a race.
Rakshas ek puri jati hai.
They are a particular species of human existence.
Wo mano astitva ki ek yoni hai.
They are very, very powerful.
Ye bahut shaktishali hai.
They are as powerful as the demigods.
Wo devtaon ke saman shaktishali hai.
The difference is the demigods are sura and they are asura.
The devta hai wo sura hai aur dusre jo hai wo asura hai.
The demigods are powerful class, powerful species of life who are all engaged in the service of the Lord.
Devta bahut shaktishali yoni hai jo ki sab bhagwan ki seva mein lage hain.
And these demon rakshasas, they are practically equally powerful, but they are against the will of the Lord.
Aur rakshas utne shaktishali hain lekin wo bhagwan ke viruddh hain.
So for both the devatas as well as the rakshasas, human society is simply insignificant.
Devtaon aur rakshas dono ke liye manav samaj jo hai tuchh hai.
So we find that these rakshasas, they made a conspiracy.
Rakshasas ne ek shadyantra kiya.
The conspiracy was to conquer the entire universe.
Aur wo kya tha ki pure brahmand ko jeetna.
And they wanted the earth planet to be the base by which they would all meet, and that would be their headquarters.
Aur wo isse kehte ki prithvi ek sthan hoga jahan par hum ekatrit honge aur wo hamara adda hoga.
So all these various rakshasas from various demonic planets of the universe were taking birth on earth.
Aur alag alag sthanon se jo hai rakshas is dharti par janam le rahe the.
That is why Krishna came at that time to take birth on earth.
Isliye Krishna bhagwan us samay dharti par janam liye.
Kamsa, Jarasandha, Shishupal, they were so powerful like thousands of elephants.
Kamsa, Shishupal, Jarasandha, hajaron hatiyon ka bal tha uske andar.
They were all working together.
Aur sab ekatrit hokar karya kar rahe the.
To destroy dharma and conquer the universe.
धर्म का नाश करके ब्रह्मांड को जीतने के लिए.
So Krishna, he personally, with his own hands, killed so many of those demons.
कृष्ण ने अपने हाथों से अनेक असुरों का वध कर दिया.
He killed Putana.
उन्होंने पूतना को मारा.
त्रिनावर्त.
त्रिनावर्त को मारा.
अघासुर.
और अघासुर.
वत्सासुर.
वत्सासुर को.
बकासुर.
बकासुर.
केशी. along with Balaram, Pralambasura, Dhenukasura.
Pralambasura, Dhenukasura to Balaram ji ke saath mara.
Vyomasura.
Vyomasura.
And then he left Vrindavan.
और वृंदावन छोड़ के गए.
Personally, with his own hands, he punched Kamsa in the head and killed him.
और अपने हाथों से कंस को मार दिया उन्होंने.
All of these demons were part of the conspiracy under Kamsa.
और ये सब जो असुर है वो कंस के षड्यंत्र का भाग था.
It is described in Garga Samhita how Kamsa actually went to different demoniac planets and personally conquered these demons and had them on the verge of death.
Kamsa ke bare mein yahan bataya gaya hai Samhita mein ki vastav mein Kamsa jo hai sab pura dharti par ghuma aur asuron ko unhone parajit kiya aur mrityu ke sar
par. I will spare your life as long as you come down to the earth, take birth and be my servant.
Main aapko chhod dunga is shart pe ki aap dharti par aao, janam lo aur meri sahayata karo.
So it's not that the conspiracy of demons is based on love and trust.
Inki shadyantra hai wo prem ki bhavna par aadharit nahi hai.
It is based on
shanti banaye rakhe hai.
Power, greed and envy.
Ye irsha ke upar aadharit.
Then there was Jarasandha.
Aur phir Jarasandha tha.
Very, very powerful.
Bahut shaktishali.
He attacked Krishna 18 times.
Unhone Krishna
17 times.
17, 18
he came 17, 18 times.
Wo 17 bar, 18 bar is tarike se aaye.
And each time he was bringing armies and armies and armies.
Aur
sometimes 20 Akshahini divisions of soldiers. That's more than on the battle of Kurukshetra. There were 17 Akshohini divisions of soldiers that fought in Kurukshetra.
यहाँ पर कुरुक्षेत्र में 17 अक्षौहिणी सेना थे, इनसे ज्यादा जरासंध ले आ रहे थे।
But Jarasandha was bringing for 17 or 18 times he brought over 20 Akshohini divisions of soldiers.
17 बार से वो 20 अक्षौहिणी से ज्यादा सेना को हर बार लेकर आए।
Assembling all these demoniac kings and their armies.
इतने सारे जो है असुरों को सेना में एकत्रित करके।
Coming right to Mathura.
और मथुरा में ले आते।
And Krishna destroyed them.
और कृष्ण को समूल नाश कर दिया।
Single-handed.
अकेले।
He hardly used his armies.
और सेना का उपयोग भी ज्यादा नहीं किया।
And then Krishna killed Dantavakra.
फिर उसके बाद कृष्ण ने दंतवक्र को मारा।
And he killed Shishupal.
फिर शिशुपाल को मारा।
Salva.
शाल्व को मारा।
And when all these gigantic asuras were killed by Krishna's own personal hands,
जब सब बड़े-बड़े असुर कृष्ण के हाथों ही मारे गए,
there were some left.
कुछ बच गए थे.
Headed by Duryodhana.
और उनके नेतृत्व नेता थे दुर्योधन.
Krishna decided, I've killed enough.
कृष्ण सोचे मैंने बहुत मार लिया.
Now my devotees, let them kill.
अभी मेरे भक्त मारें.
I will empower them.
मैं उनको शक्ति प्रदान करूं.
So this battle of Kurukshetra was actually ultimately the will of the Lord.
वास्तव में ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ.
Bring back the surviving asuras.
जो बचे कुछ ही असुर थे उनको वापस
लाओ. Assemble them all on this battlefield.
उनको युद्ध के भूमि में एकत्रित करने के लिए.
And have them kill each other.
और एक दूसरे को मार दें.
And have his devotees victorious.
और उनके भक्त विजयी हो जाएं.
Duryodhana represents the very essential anartha of envy that keeps havoc, violence, and hatred within this world.
इस दुनिया में हिंसा पैदा करने वाली की जो ईर्ष्या की भावना है, वो दुर्योधन उसका प्रतिनिधित्व करते हैं.
And the five Pandavas represent the true representatives of God.
और पांच पांडव जो है भगवान के सच्चे प्रतिनिधि हैं.
So the battle was inevitable.
तो युद्ध तो होना ही था.
Although Krishna himself personally assumed the position of the messenger of Yudhisthira to try to offer a opportunity for peace.
भगवान कृष्ण खुद युधिष्ठिर के संदेशवाहक के रूप में गए और उनको शांति करने का एक अवसर प्रदान किया.
But Duryodhana was so demonic.
लेकिन दुर्योधन इतना असुरी व्यक्ति था.
Even when Krishna came as a messenger of peace,
जब कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए,
Duryodhana sent his armies to arrest him and put him in prison.
दुर्योधन ने उनकी अपनी सेना को भेजा और उनको जेल में डालने का प्रयास किया.
Krishna manifested his virat roop.
कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया.
They could not go near him.
वो उनके पास भी नहीं जा सके.
But even after seeing Krishna's universal form, Duryodhana's heart was not softened at all. Rather, he became more envious.
और ये देखने के बाद भी उसका हृदय नरम नहीं है, उसको और गुस्सा आ गया, ईर्ष्या होने लगी.
So there were 11 Akshohini divisions of soldiers on the side of the Kurus.
कुरु के साइड में 11 अक्षौहिणी सेना थी.
7 divisions of soldiers called Akshohini on the side of the Pandavas.
और पांडवों की ओर से सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी.
They assembled here in Kurukshetra.
वो यहाँ पर एकत्रित हुए कुरुक्षेत्र में.
Arjuna accepted Krishna as his chariot driver.
अर्जुन ने कृष्ण को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया.
Krishna said, I will not fight in this battle.
कृष्ण ने बताया कि मैं युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा.
I'll give some of my army to one side, and on the other side, I will be, but I will not lift a single weapon.
एक तरफ मैं अपनी सेना का कुछ अंश दूंगा और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा.
Duryodhana was thinking, what is the use of Krishna if he's not going to fight for me?
दुर्योधन सोच रहे थे कृष्ण क्या फायदा अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे.
And Arjuna was just thinking, what do I need armies if I have Krishna, then I have everything.
Arjuna सोच रहे थे मुझे सेना क्या जरूरत है अगर कृष्ण है तो सब कुछ है.
So Krishna took that promise, I will not lift a weapon and I will not fight.
तो कृष्ण ने यह वचन लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा और लड़ूंगा भी नहीं.
What did he do? He accepted the position of the charioteer of Arjuna, Partha Sarathi.
तो उन्होंने पार्थ सारथी के रूप में अर्जुन के सारथी के पद को स्वीकार किया.
Very humble position.
बहुत ही नम्र पद है ये.
To be the chariot driver of his devotee.
अपने भक्त के सारथी बनना.
Arjuna spoke to Krishna.
Arjuna, भगवान कृष्ण तो बोले,
Please. Bring my chariot, O Krishna, to the center of the battle.
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए.
I want to see who has assembled on both sides to fight this war.
इस युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं को मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ.
Krishna brought his chariot to this place that we are sitting now.
Krishna अपने रथ को इसी स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर ले आए.
Arjuna, Krishna said to Arjuna, Now you look and see who has assembled for this great war.
Krishna ने अर्जुन से कहा कि अभी आप निरीक्षण करिए कि कौन-कौन इस युद्ध में आए हैं.
Arjuna looked on both sides.
अर्जुन ने दोनों तरफ देखा.
Being a very soft-hearted Vaishnava. He was very, very much disturbed by what he saw.
और एक वैष्णव नरम हृदय होने के कारण वो बहुत विचलित हुए ये सब देखकर.
He saw that on either side were friends, relatives, and well-wishers who he loved.
उन्होंने देखा दूसरी तरफ दोनों तरफ उनके मित्र रिश्तेदार वो सब थे जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे.
On the side of the Kurus. His enemies, he had to fight. He saw his most beloved teacher, Dronacharya.
और कुरु की ओर देखा उन्होंने उनके प्रिय गुरु द्रोणाचार्य.
And Bhishma, his grandfather.
और अपने पितामह भीष्म को देखा.
And many other great and noble souls.
और अनेक महात्माओं को वहाँ पर देखा.
He became confused.
वो भ्रमित हो गए.
Bewildered.
तो मोहित हो गए.
He did not want to fight.
वे लड़ना नहीं चाहते थे.
He presented so many very logical, philosophical, and shastric arguments to Krishna why this fight cannot be.
उन्होंने शास्त्र के आधार पर, तर्क के आधार पर अनेक कारण बताए कि लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए.
Even if we win this war, how will we enjoy if our gain is through the shedding of the blood of people we respect and love?
वो कहने लगे अगर हम युद्ध में जीत भी जाएंगे तो हम कैसे आनंद लेंगे जब हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उन्हीं का खून बहाया जाएगा.
And when these great personalities die in the battlefield, their wives, who are innocent, will suffer the fate of being widows.
और जब लड़ाई में योद्धा मारे जाएंगे तो उनके पत्नी जो कि निर्दोष हैं वो विधवा हो जाएंगी.
And when women are unprotected, they will be exploited by unscrupulous men.
और जब स्त्री की रक्षा नहीं की जाएगी तो जो पुरुष है वो उसका शोषण करेंगे.
That will bring about unwanted population.
और फिर अवांछित प्रजा की उत्पत्ति होगी.
Such unwanted population will not perform samskaras or live by religious principles.
ऐसे व्यक्ति या संस्कार या धार्मिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे.
They will create havoc in society. The whole world will be ruined.
और पूरे समाज में भ्रांति पैदा कर देंगे और पूरे दुनिया का नाश हो जाएगा.
I will not fight.
मैं लड़ूंगा नहीं.
Arjuna was shaking.
अर्जुन कांप रहे थे.
Crying.
वो रो रहे थे.
His body became pale.
और उनका शरीर फीका पड़ गया.
Mouth became dry.
मुंह सूख गया.
His hairs were standing on end in grief.
और दुख के मारे उनके शरीर के बाल खड़े हो रहे.
No longer hold his Gandiva bow.
वो गांडीव धनुष को धारण नहीं कर पा रहे थे.
In that state, he turned to Krishna.
और उस अवस्था में वो कृष्ण की ओर मुड़े.
With folded palms.
हाथ जोड़कर.
कार्पण्य दोषो पहतास्तु बाबा पृच्छामि त्वं धर्मसम्मुच्यते यत्श्रेयस्य निश्चितं गृहीतं मे शिष्यास्ति अहं सारिमं त्वं प्रपानम्. I am confused about my duty.
मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ.
I have lost all composure due to weakness.
और कमजोरी के कारण मैं सब अपनी स्थिति को भूल गया हूँ.
In this condition, I do not know what is right and what is wrong.
स्थिति में मुझे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है.
What is to be done and what is not to be done.
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए.
In this condition, O Krishna, please instruct me.
इस अवस्था में है कृष्णा कृपया मुझे मार्गदर्शन करिए.
I am surrendered to you.
मैं आपके प्रति समर्पित हूँ.
I am your disciple.
मैं आपका शिष्य हूँ.
In this place where we are sitting today, Krishna smiled upon Arjuna. And he spoke.
और वो बोले,
Sri Bhagavan Uvacha.
Sri Bhagavan Uvacha.
When Krishna spoke, it was not like you or me speaking.
जब कृष्णा बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं या आप बोल रहे हैं.
It is the absolute truth, the supreme personality of Godhead speaking.
वो परम सत्य भगवान बोल रहे हैं.
असोचनंद सोचस्त्वं प्रज्ञवारं सुभाषसे गतासमगतासु सानानु सोचन्ति पण्डिता. Arjuna, while speaking learned words, you are lamenting for that which is not worthy of grief.
अर्जुन से वो कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम पढ़े लिखे शब्द बोल रहे हो, इस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए.
Those who are wise lament for neither the living nor the dead.
जो बुद्धिमान है वो जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते.
Then Krishna, in second chapter of Bhagavad Gita, explained the nature of the soul.
तो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वभाव को समझाया.
विजायते म्रियते वा कदाचिन नयान भूप भावितवान अभूया अजो नित्य शाश्वतो यन पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul, there is neither birth nor death.
आत्मा के लिए न जीवन न जन्म है न मृत्यु है.
So having once been, does it ever cease to be?
और एक बार होने के बाद कभी उसका नाश नहीं होता.
The soul is eternal.
वो शाश्वत है.
Undying.
उसकी मृत्यु नहीं होती.
Primeval.
और वो आदि है.
It is not slain when the body is slain.
शरीर के नाश होने पे भी उसका नाश नहीं होता.
जैसे
व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी तरीके से व्यक्ति पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को स्वीकार करता है.
So cannot be killed by any weapon.
आत्मा को अस्त्रों के द्वारा मारा नहीं जा सकता.
Cannot be burnt by fire, withered by the wind, or destroyed by water.
और अग्नि के द्वारा, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता.
The soul is transcendental.
वो दिव्य है.
It is spiritual.
वो आध्यात्मिक है.
देहिनो स्मिन्यता देहे कोमरोम यवनम चरा तथा देहांतरा प्राप्य धीरस्थत्रा नमो. The embodied soul passes through boyhood, youth, and old age. Similarly, the soul accepts a new body at the time of death.
इस प्रकार इस शरीर में आत्मा बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे आता है. उसी प्रकार से मृत्यु के समय वो दूसरे शरीर को स्वीकार करता है.
Krishna explains to Arjuna how the soul is entangled by this material nature.
कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति में जीवात्मा फंस जाता है.
Srila Prabhupada and our acharyas explained that Bhagavad Gita is the most perfect synthesis of all transcendental knowledge.
Srila Prabhupada and acharya batate hain ki Bhagavad Gita sare divya gyan ka sankalan hai.
It is called Gita Upanishad.
Isko Gita Upanishad kaha jata hai.
And it is the most fundamental and essential of all spiritual literatures.
Sab adhyatmik shastron mein sabse mool shastra Bhagavad Gita hai.
It deals essentially with five subjects.
उसमें पांच विषयों का वर्णन आता है.
ईश्वरा or the supreme controller कृष्ण.
पहला है ईश्वरा या परमेश्वर श्री कृष्ण.
The जीवात्मा. The part and parcel living entity.
दूसरा है जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है.
प्रकृति.
तीसरा है प्रकृति.
The material nature.
ये भौतिक प्रकृति.
The inferior external energy of the supreme lord.
वो भगवान की निम्न श्रेणी की बहिरंग शक्ति.
Kala or eternal time.
चौथा है काल या समय.
And karma or action.
पांचवा है कर्म.
Ishvara or Krishna is the supreme controller who has manifested everything by his own sweet will.
ईश्वर जो परमेश्वर कृष्ण है जिन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ प्रकट किया है.
He creates all living entities simultaneously one and different from himself.
और वो सब जीवात्माओं को सृजन करते हैं अपने से एक और अलग भी एक ही समय.
Qualitatively one, eternal, full of knowledge and full of bliss, but quantitatively a fragmental part of Krishna.
गुणात्मक रूप से एक सच्चित आनंद लेकिन मात्रा में वो भगवान के अंश के रूप में.
Every living entity is eternal servant of Krishna.
हर एक जीवात्मा कृष्ण का नित्य सेवक है.
And within the heart of every living entity is pure love for Krishna.
और हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है.
That transcendental exchange of love is what every living being is created to enjoy.
जो ये दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है उसी के लिए जीवात्माओं को रचना की गई है.
But in order for there to be love, there must be free will.
लेकिन प्रेम के होने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है.
And those who continue to misuse their free will, this prakriti or material nature has been created.
जो लोग अपनी इच्छा का गलत उपयोग करते हैं उनके लिए ये भौतिक प्रकृति का निर्माण किया गया है.
Material nature is that place where everything is trying to be lord of all they survey.
भौतिक जगत ये स्थान है जहाँ पर हर एक व्यक्ति जो स्वामी बनना चाहता है जो कुछ भी दिखाई पड़ता है.
Trying to compete with the lord by being proprietor and enjoyer.
भगवान से जो स्पर्धा करना चाहते हैं मालिक बनने के लिए और भोक्ता बनने के लिए.
Everyone wants to be glorified.
हर एक व्यक्ति अपने खुद का गुणगान करना चाहता है.
That is the exclusive position of Krishna.
वास्तव में ये कृष्ण का पद है.
And this material nature, how does it continually or perpetually entangle people in this illusion?
और कैसे भौतिक प्रकृति लोगों को इस भ्रम में बनाए रखती है?
If we want to get out of the mess, we have to understand what is the mess we're in.
अगर हम झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले झंझट को समझना चाहिए.
Therefore, Krishna explains authoritatively in Bhagavad Gita.
तो इसलिए बड़े अधिकार के साथ भगवान श्री कृष्ण इस तत्व को भगवद गीता में समझाते हैं.
This material nature is composed of three modes of material nature.
भौतिक प्रकृति जो तीन गुणात्मक रूप से है.
प्रकृते क्रियमानानि गुणकर्मणि सर्वशः अहंकाराभिमूतात्मकर्तामिति मान्यते. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities which are actually being carried out by nature itself.
जो मोहित जीवात्मा है वो मोह के कारण सोचता है कि मैं ही करता हूँ उन कार्यों का जो वास्तव में प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं.
There is tamaguna, rajaguna and sattvaguna.
तीन गुण है तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण.
And everything within this material creation can be categorized under the influence of these three modes of material nature.
और जितना भी भौतिक जगत में है वो ये तीन गुणों के अंदर माना जा सकता है.
The mode of ignorance causes us to be very lethargic and sleepy.
The tamogun hai usse hame bahut jo hai neend aati hai aur aalsi hote hain.
Cruel
aur krur banate hain.
Violent
hinsatmak
prone toward intoxications.
Nashili madak cheezon ke prati mudte hain.
The mode of passion influences us to be very active.
रजोगुण के कारण हम बहुत क्रियाशील हो जाते हैं.
To accumulate more and more and more and more wealth.
और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हम एकत्रित करना चाहते हैं.
And enjoy more and more of the pleasures of the world.
और दुनिया के आनंदों का ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहते हैं.
Especially the pleasure of sex.
विशेष करके मैथुन जीवन का आनंद.
Which is a misuse of the sacred principle of procreation, which is meant to be utilized for the service of God.
जो कि वास्तव में भगवान की सेवा के लिए संतान उत्पत्ति के उपयोग किया जाना चाहिए.
People are mad with passion.
लोग रजोगुण के कारण पागल हो जाते हैं.
And maddened by ignorance.
और अज्ञान के कारण पागल हो जाते हैं.
There is sattvaguna.
और फिर सत्वगुण.
The mode of goodness, where people are very become influenced by compassion.
जिससे लोग दया के द्वारा भावना से भर जाते हैं.
Cleanliness.
सफाई की भावना.
Charitableness.
दान देना.
So Bhagavad Gita teaches us we have to strive to live in the mode of goodness.
भगवद गीता में समझाती है कि हमें सत्वगुण पे आने का प्रयास करना चाहिए.
But that's not enough.
लेकिन वो सब कुछ नहीं है.
There are 14 planetary systems.
14 लोक हैं.
Divided into three basic categories: the upper planets, the middle planets, and the lower planets.
उनको तीन श्रेणी में बांटा गया है: एक उच्च लोक, मध्य लोक और पाताल लोक.
The upper planets were for those who are in the mode of goodness, who can enjoy incredible amounts of happiness.
जो उच्च लोक है वो बहुत सत्वगुण के लोगों के लिए है जो कि बहुत सारा भौतिक सुख भोग कर सकते हैं.
Middle planets are a place of struggle for existence.
और जो मध्य लोक है वो संघर्ष की भूमि है.
And the lower planets are a place of utter nothing but misery and suffering.
और जो नीचे के लोक हैं वो दुखों से भरे हुए स्थान हैं.
So through the mode of ignorance, people go to the lower planets.
और तमोगुण से व्यक्ति नीचे के लोकों में जाते हैं.
Mode of passion, people continue struggling in these middle planets.
और रजोगुण में लोग संघर्ष करते रहते हैं मध्य लोक में.
Mode of goodness, you can enjoy the higher planets.
और सत्य लोक से आप ऊंचे लोकों का आनंद ले सकते हैं.
But Krishna tells Arjuna, Tribhir Gunamaya Bhavaya, that these three modes of material nature, I am above them all.
भगवान बताते हैं कि तीन गुण हैं लेकिन मैं इन तीनों से परे हूँ.
त्रिगुण्य विषया वैर निस्त्रिगुण्य बवार्जुन निर्द्वान वो नित्य सत्वष्टो नियोग क्षेमात्मवान. The Vedas mostly deal with these three modes of material nature.
भगवान बताते हैं कि वेदों में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया गया है.
Rise above them, Arjuna.
हे अर्जुन, इनसे ऊपर उठो.
Be transcendental to these modes of material nature.
इन गुणों से दिव्य हो जाओ.
And be established in the truth of the self.
और आत्मा के सत्य में अपने आप को स्थापित करो.
सबसे
ऊंचे ब्रह्मलोक से लेकर पताल लोक तक सब दुखों के स्थान है अर्जुन.
All places of birth and death.
सब जन्म और मृत्यु के स्थान है.
Come to my abode.
मेरे धाम में आ जाओ.
Never take birth and suffer again.
और इस दुनिया में फिर से दुख मत भोगो.
So the three modes of material nature are called gunas, which is sometimes translated as qualities and sometimes as ropes.
ये तीन गुण हैं. कभी-कभी इनको गुण बोला जाता है और कभी-कभी इनको रस्सी बांधा जाता है.
Just like ropes, they bind us to this material existence.
जैसे रस्सी बांधती है वैसे हमको ये चीजें जो हैं भौतिक अस्तित्व से बांध के रखते हैं.
And human life is not meant simply to select which rope is going to pull us the furthest.
मानव जीवन इसलिए नहीं है कि हमें कौन से रस्सी चुननी है.
It's meant with the sword of knowledge to cut these ropes.
ज्ञान की तलवार से इन रस्सियों को काटना है.
The three modes of material nature are activated by kala rupa or time.
और ये तीन गुण जो है वो काल के द्वारा कार्य करने शुरू करते हैं.
Eternal time.
क्योंकि शाश्वत काल है.
All devouring time.
जो सबको नष्ट करने वाला काल है.
In the 11th chapter of Gita, Krishna gave us a visualization of time.
11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण काल का एक रूप हमारे सामने दृष्टिगोचर करते हैं.
The universal form.
और वो है भगवान का विराट
रूप. Devouring everyone.
सबको खाते हुए.
Even the greatest heroes and conquerors of the world are all being devoured by time.
और जो बहुत बड़े बड़े विजेता भी हैं वो भी काल के द्वारा ग्रसित हैं.
What is history?
इतिहास क्या है?
History is simply the story of all kinds of dead people.
और इतिहास क्या है? मरे लोगों की कहानी.
It's a fact.
ये सत्य है.
People study history, but they don't think about it. It's obvious. Everyone we read about, everyone we talk about is dead.
लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो सब लोग मर गए हैं.
Some were success, some were failure.
कोई सफल, कोई असफल.
Some accomplished great things.
कुछ लोगों ने बड़ी-बड़ी चीजें की.
Some performed dastardly, wicked deeds.
कोई लोगों ने बहुत असुरिक कार्य किए.
But they're all dead.
लेकिन सब मर गए.
And when they died, people either laughed or cried.
और जब वो मरे तो कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए.
Yudhishthira Maharaj, he considered this the most wonderful thing going on in the whole planet.
Yudhishthira Maharaj ने कहा कि यही सबसे बड़े आश्चर्य की चीज है पूरे लोक में.
That a whole history of everything we read about, everyone's dead.
कि सारा इतिहास जो हम पढ़ते हैं सब लोगों के बारे में सब मर गए.
And around us, we see everyone's dying.
और हमारे आमने सामने हम देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है.
Look at your parents, they're getting old.
आपके माता पिता को देखिए वृद्ध हो रहे हैं.
Look in the mirror, you're getting old.
और आप आईने में देखोगे तो आप भी जो बूढ़े हो रहे हो.
What does that old mean?
वो क्या है?
That means you're being devoured by time.
इसका मतलब काल के द्वारा आप खाए जा रहे हो.
Little by little.
धीरे धीरे.
Marching toward death.
आप मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं.
No one can escape.
कोई भाग नहीं सकता.
So this time element, which is bringing everyone to death, is activating the three modes of material nature.
ये जो काल है, वो तीन गुणों को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित कर रहा है.
And within this condition, where the Supreme Lord, who is the controller of the whole material nature, is living within the heart, watching everything and everyone.
और इस स्थिति में भगवान जो है वो हृदय में जो है वो सब कुछ देख रहे हैं।
मयाध्यक्ष न प्रकृति सूर्य तेसा चरा चरा हेतु नानी लोग कहते हैं जगत भी परिवार देते हैं। Krishna says in Gita that I am the director of this whole material nature.
भगवान गीता में बताते हैं कि सारे प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूँ।
And how the individual soul, the jivatma, is responding to the influences of material nature being activated by time.
और कैसे जीवात्मा जो है प्रकृति के गुणों पे कैसे वो प्रभावित होता है जो कि काल के प्रभाव से है.
Those responses bring about action.
और जो उनका जो प्रभाव होता है उससे कर्म होता है.
That action is called karma.
उसी को कर्म कहते हैं.
In everything you do.
और हर एक चीज जो आप करते हैं.
Everything you speak.
जो भी आप बोलते हैं
creates a karmic bondage.
उससे जो है कर्मों का एक बंधन पैदा होता है.
Where there will be a reaction.
और फिर उसका फल होता है.
For every action there is an equal corresponding reaction.
हर एक कर्म के लिए जो है उसका एक फिर फल होता है.
This is the law of nature.
ये प्रकृति का नियम है.
When we talk about law of nature, it is not like the laws of this world.
ये जब हम प्रकृति के नियम बोलते हैं दुनिया के नियम के जैसा नहीं है वो.
The man-made laws of this world, we can break them. And if we're caught, we're punished.
और प्रकृति ये संसार के नियम हैं आप तोड़ सकते हैं और फिर पकड़े जाएंगे तो सजा होगी.
But if we're intelligent enough, or if we have enough money or influence over others' lives, we can break the laws and not have to suffer the reaction of these man-made laws.
लेकिन अगर हमें पैसा है या हम बुद्धिमान हैं तो हम नियमों को तोड़ने के बाद भी बच सकते हैं बिना कोई फल प्राप्त किए.
But you cannot bribe Krishna.
इन कृष्ण को रिश्वत नहीं ले सकते हो.
And he is the super soul in your heart.
वो आपके हृदय में परमात्मा स्वरूप में वास कर रहे हैं.
In and between every atom.
हर एक कण कण में.
Watching through the sun and the moon and all the stars.
सूर्य और चंद्रमा और तारों के द्वारा वो सब देख रहे हैं.
You cannot escape the eye of Krishna.
कृष्ण की आंखों से आप बच के नहीं निकल सकते.
So whatever you do, whatever you say, the laws of nature will give you a reaction.
जो भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, आपको प्रकृति के नियम का आपको फल भुगतना पड़ेगा.
So Bhagavad Gita is explaining what kind of actions bring about what kind of reactions.
भगवद गीता समझाती है कि क्या कार्यों का कैसा प्रकार का फल होता है.
But what is Krishna's conclusion of Gita?
लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं गीता के अंत में?
सर्व धर्मं परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. Abandon all varieties of religion, abandon all varieties of occupational attachments, and just surrender to me.
भगवान बोलते हैं सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ.
I will deliver you from all sins.
मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा.
Do not fear.
डरो मत.
Krishna explains in Gita, karma nyevadikarashtai, that everyone must perform their action, their work.
भगवान गीता में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्म करना है.
One should not be attached to the fruits of their action.
लेकिन उस फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए.
Nor should one be attached to not doing one's duty.
और व्यक्ति को अपने कर्तव्य न करने के प्रति भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए.
So what should one do?
हमें क्या करना चाहिए?
यत् करोषि रसनासि यत् तुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ति तत् कुरु शुनो तर्पणम्. Whatever you do should be done as an offering to Krishna.
जो कुछ भी आप करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए.
That is knowledge.
वो ज्ञान है.
That is the only real method of liberation.
और यही मुक्ति का सच्चा मार्ग है.
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति तदहं भक्ति पाहरणम् अश्नामि प्रयतात्मनः. And anyone can follow this principle.
और कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन कर सकता है.
Offer me even a little water, a fruit, a leaf, or a flower.
मेरे को पत्ता, फल, जल, कुछ भी अर्पण करें.
If it is given with devotion, I accept it.
अगर भक्ति से दिया है, तो मैं स्वीकार करता हूँ.
And if I accept what you offer, that is the perfection of your life.
और अगर जो आप जो आपने अर्पण किया, अगर मैं स्वीकार करता हूँ, तो आपका जीवन सफल है.
अंतकाली च मामेव स्मरन् मत्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भवं याति नस्यत्र संशयः. यम यम वापि स्मरन् भावं च जच्यन्ते कलेवरं त
tam tam evaite kontiya sadatat bhava bhava. Very important.
Ye bahut mahatvapurna hai.
What we remember at the time of death, that we will attain without fail.
Jo hum mrityu ke samay smaran karenge wo nishchit hame prapt hoga.
And death can come at any moment.
Aur mrityu kabhi bhi aa sakti hai.
One who remembers me at the time of death, Krishna says, will attain me. That is for certain.
Jo mrityu ke samay mera smaran karega wo mujhe prapt hoga, ye nishchit hai.
So this is the essence of Gita.
Ye Gita ka saar hai.
That our life is meant as an offering of devotion to Krishna.
कि हमारा जीवन जो है वो कृष्ण को अर्पण करना है.
मान मना भगवान भक्तो माध्य शिव नमस्कार नामे वैश्य श्री सत्यम ते प्रतिजन to always remember Krishna.
हमेशा कृष्ण को स्मरण करो.
To be Krishna's devotee.
कृष्ण के भक्त बनना.
To worship him and offer our homage unto him.
उनकी आराधना करना और उनको नमस्कार.
This way Krishna says you will come to me without fail.
ऐसा करने से आप निश्चित मेरे को प्राप्त होंगे ऐसा कृष्ण बताते हैं.
Krishna has revealed the very secret of the essence of life here in Kurukshetra at Jyotisar.
यहां पर कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर में भगवान ने जो है जीवन का रहस्य प्रदर्शित किया है.
But who is willing to follow the principles of Bhagavad Gita?
लेकिन गीता के मूल सिद्धांतों को कौन पालन करना चाहता है?
Bhagavad Gita is not simply meant as a theoretical study. It is a way of life.
भगवद गीता एक खाली एक अध्ययन के लिए नहीं है बल्कि जीवन की पद्धति है शैली है.
Śrīla Prabhupāda explains, if you want to understand Gita, you must be in the spirit of Arjuna.
अगर आप गीता को समझना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की भावना में रहना चाहिए.
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम इदम उत्तमम. You must accept Krishna as God.
आपको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए.
And you must become his devotee.
और उनका भक्त बनना चाहिए.
And you must realize that you are ignorant.
और ये जानना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ.
And desperately in need of his mercy.
और आप उनकी कृपा को चाहते हैं.
आज यदि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवय उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने नस्तत्तु दर्शनम. How do we approach Krishna?
हम कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
We approach him through his words.
उनके शब्दों के द्वारा.
And his words are embodied by his devotees.
और उनके शब्द जो हैं, वो उनके भक्तों के द्वारा प्रकट होते हैं.
Therefore, we approach a spiritual master and inquire submissively.
इसलिए हम गुरु के पास जाते हैं, नम्रता से जिज्ञासा करते हैं.
We submit ourselves and render service.
हम उनको समर्पित करते हैं. सेवक के रूप में.
The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen Krishna.
जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति है वो आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को देखा है.
एवं परंपरा प्राप्तम इदम रजाशया विदु. Krishna says this, we must approach guru in disciplic succession.
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गुरु को परंपरा में स्वीकार करना चाहिए.
And the guru who is speaking in disciplic succession simply repeats Bhagavad Gita as it is.
जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं वो भगवद गीता को यथारूप पेश करते हैं.
Śrīla Prabhupāda was asked when he was in America, "Can you recommend a Bhagavad Gita for me to read by one American lady?"
एक अमेरिकन स्त्री ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मुझे बता सकते हैं भगवद गीता का कौन सा अंग्रेजी अनुवाद मैं पढूं?
There were hundreds of Bhagavad Gitas in English language.
उस समय जो है हजारों अनुवाद थे अंग्रेजी भाषा में.
Not a single one says that Krishna is the supreme personality of Godhead.
उसमें से कोई एक भी ये नहीं कहता कि कृष्ण भगवान है.
Not a single one explains that you have to follow the path of bhakti.
और उसमें से कोई भी ये नहीं सिखाता कि भक्ति के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए.
Krishna tells Arjuna, because you're my bhakti, you can understand. Otherwise, no one can understand.
भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्योंकि आप मेरे भक्त हो इसलिए आप समझ सकते हो नहीं तो कोई नहीं समझ सकता.
भक्त्यात्मन अन्ययाशक्यामहमेवं विदुः अर्जुनं ज्ञातं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परन्तपः. Only through undivided devotion can I be understood as I am.
भगवान बोलते हैं कि सिर्फ जो अनन्य भक्ति के द्वारा मैं समझा जा सकता हूँ जैसा मैं हूँ.
माम अभी जानाति यवन यश्चस्मितात्मता. One cannot understand Krishna through any other means except devotion.
भक्ति के अलावा और कोई दूसरे तरीके से हम कृष्ण को नहीं जान सकते.
Only through devotion can we enter into the kingdom of God.
और सिर्फ भक्ति के द्वारा हम कृष्ण के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं.
Therefore, Śrīla Prabhupāda commenced to translate Bhagavad Gita as it is.
इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप का अनुवाद करना शुरू किया.
As Krishna spoke it here in Jyoti Sagar Kurukshetra.
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ज्योति सर में सुनाया.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he personally, by his example, along with his associates, taught us how to live Bhagavad Gita.
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सहचारों के साथ हमें सिखाया कि कैसे भगवत गीता के अनुसार जीवन बिताना चाहिए.
Who is Sri Chaitanya Mahaprabhu?
Sri Chaitanya Mahaprabhu कौन है?
He is the very speaker of Bhagavad Gita.
वो भगवत गीता के ही वक्ता हैं.
Who descends in the world to teach us how to follow his own teachings.
वो दुनिया में इसलिए अवतरित होते हैं हमें सिखाने के लिए कि कैसे स्वयं की शिक्षाओं का हमें पालन करना है.
Therefore he comes in the role of a devotee.
इसलिए वो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं.
To teach us how to be devotee.
ये दिखाने के लिए कि कैसे भक्त बनना है.
By being very humble.
नम्र बनने के द्वारा.
By approaching guru.
गुरु के शरण में जाने के द्वारा.
By inquiring submissively.
नम्रता से जिज्ञासा करने के द्वारा.
Serving Vaishnava.
वैष्णव की सेवा करके.
By showing compassion, by preaching to others.
दया की भावना से दूसरों को प्रचार करते हुए.
By worshiping the deity.
विग्रह की आराधना करने के द्वारा.
By reading the Gita and the Bhagavad.
गीता और भागवत के अध्ययन के
द्वारा.
नियमित पूर्वक.
By visiting holy places.
तीर्थ यात्रा करने के द्वारा.
And mostly by always thinking of Krishna.
हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं.
The performance of the Yuga Dharma.
युग धर्म का पालन के द्वारा.
The chanting of the holy name.
भगवान के नामों का कीर्तन.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे.
Loudly.
हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे.
Srila Prabhupada explains, unless we're tired of the suffering of material life, unless we're frustrated by the futility of mundane thinking, we cannot seriously approach Bhagavad Gita.
Srila Prabhupada samjhate hain ki jab tak hum is bhautik duniya se tang nahi aa jate tab tak hum Bhagavad Gita ke kareeb nahi pahunch sakte.
Bhagavad Gita is the mercy of Krishna.
Bhagavad Gita jo hai wo Krishna ki kripa hai.
The most profound knowledge of the absolute truth, the world we live in, who we are, and the predicament we're in is revealed.
और सबसे बड़ा गहरा ज्ञान हम क्या हैं और कैसे हम इस दुनिया में फंसे हैं वो सब समझाया गया है.
But most of all, Bhagavad Gita teaches us how to live in this world in pure devotion to the Lord.
और भगवद गीता हमें समझाती है कि कैसे भगवान के प्रति सेवा भावना से भक्ति भावना से हमें रहना है.
When Krishna concluded Gita's teachings, he told Arjuna, "Now you have heard what I speak. Do as you like."
Gita puri sunane ke baad Bhagwan Krishna ne Arjuna se kaha, "Ab jo ichha ho, wo karo."
Arjuna said, "Krishna, you are the Lord."
Arjuna ne kaha, "Krishna, aap swami ho."
"I will do your will."
"Main aapki ichha ko puri karunga."
"I will fight for you."
"Main aapke liye yuddh karunga."
Similarly,
उसी तरीके से.
It is very important.
ये बहुत महत्वपूर्ण है.
Bhakti means to serve.
भक्ति का मतलब सेवा करना.
Bhakti means to fight against delusion.
माया के विरुद्ध युद्ध करना.
The illusions that are within us and the illusions that are without outside of us.
जो हमारे अंदर हैं और बाहर हैं सब प्रकार के भ्रम.
We must be willing to fight.
हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए.
And by our Guru Parampara, the teachings of Gita are revealed how to fight against delusion.
और गुरु परंपरा में भगवद गीता की शिक्षा बताया जाता है कैसे माया के विरुद्ध युद्ध करना है.
And that is the subject matter of this Krishna consciousness movement.
और ये कृष्ण भावना आंदोलन का विषय है.
In this age of Kali, Krishna has descended in His name.
इस कलयुग में भगवान कृष्ण अपने नाम और रूप में प्रकट हुए हैं.
To dispel ignorance.
अज्ञान को दूर करने के लिए.
To destroy the kurus within the Kurukshetra of our hearts.
हमारे हृदय के कुरुक्षेत्र के कुरुओं का समूल नाश करने के लिए.
Therefore, always remember Krishna.
इसलिए हमेशा कृष्ण का स्मरण करें.
Chant His holy name.
उनके नामों का कीर्तन करें.
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च आदृतावृता नामस्यन्तश्च माम भक्त्यान्यति योक्ताम् भाषितः. Krishna tells us, always chant my glories.
भगवान बताते हैं कि हमेशा मेरे गुणों का गान करो.
So we are so fortunate. We have come here to Kurukshetra.
हम इतने सौभाग्यशाली हमें कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हैं.
Very very ancient place of pilgrimage.
बहुत ऐतिहासिक तीर्थस्थल है ये.
A place since time immemorial people would come to perform sacrifice.
अनादिकाल से लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए एकत्रित होते हैं.
We are reading the first verse of Gita today.
आज हम गीता के प्रथम श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं.
Dhritarashtra was not happy about this venue for the war.
Dhritarashtra जो लड़ाई का जो स्थान चुनना था उसे खुश नहीं थे.
That they're fighting this battle at Kurukshetra.
सुना कि लड़ाई कुरुक्षेत्र में हो रही है.
धर्मक्षेत्र.
जो कि धर्मक्षेत्र है.
It's the field of dharma.
वो धर्म की भूमि है.
So many sacrifices, so many rishis and sages have purified and sanctified this place.
कितने यज्ञ और कितने ऋषि मुनियों ने इस स्थान को पवित्र बनाया है.
Holy places have great, great power.
पवित्र स्थानों में बहुत दिव्य शक्ति होती है.
And Dhritarashtra knew that his sons represented a dharma.
और जानता था कि मेरे पुत्र अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
And the Pandavas represent dharma.
और पांडव धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
Therefore, this Kurukshetra is the wrong place.
इसलिए कुरुक्षेत्र के लिए गलत स्थान है.
Better if it was fought in Bombay or.
ज़्यादा अच्छा था बॉम्बे में लड़ाई होती है कहते
हैं. New York.
या न्यूयॉर्क में.
London, Chicago, one of these places.
London, Chicago जैसे कोई.
Duryodhana would have gotten better energy and strength to fight.
Duryodhana को ज़्यादा शक्ति मिली लड़ाई करने के लिए.
कुरुक्षेत्र. धर्मक्षेत्र. Dhritarashtra knew in his heart of hearts that Krishna was the supreme personality of God.
अपने हृदय में धृतराष्ट्र जानते थे कि कृष्ण जो है वो भगवान है.
And that he would lose everything.
और वो सब कुछ जानते हैं.
But due to the influence of the bad association of his son, he could not do the right thing.
अपने पुत्रों के कुसंग के कारण वो सही चीज को नहीं कर पाए.
Association is very important.
संग बड़ा महत्वपूर्ण है.
Without association of devotees, Rupa Goswami says you cannot follow bhakti.
Rupa Goswami बताते हैं भक्तों के संग के बिना भक्ति का पालन नहीं कर सकते.
Chaitanya Mahaprabhu was asked, "What is a devotee?"
Chaitanya Mahaprabhu से पूछा गया था भक्त कौन है.
Prasad sangatyaga vaishnava char. He said a devotee is one who associates with devotees.
कि भक्त वो है जो दूसरे भक्तों का संग करता है.
And avoids the association of people who are too much materialistic and addicted to sense gratification.
और जो भौतिक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की तरह झुके हुए हैं उनके संग से जो दूर रहता है वो भक्त है.
In that association we're protected.
उस संग में हमारी रक्षा होती है.
In that association our intelligence remains strong.
और ऐसे संग में हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली होती
है. To make proper discrimination.
जिससे कि हम भेद कर सके.
And choose seva to Krishna rather than exploitation of our senses and mind.
जहाँ से हम इंद्र तृप्ति के बजाय कृष्ण की सेवा को चुन सकते हैं.
We come here to Kurukshetra to reconfirm and reinforce our faith.
हम कुरुक्षेत्र में आते हैं फिर से अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए.
And our dedication.
और हमारे समर्पण की भावना को.
To honor and respect Vaishnavas.
वैष्णवों के प्रति आदर भावना रखना.
To very, very, very seriously bathe our consciousness every single day by reading Shri Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam, and these great scriptures.
Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam जैसे महान शास्त्रों में अपने बुद्धि को स्नान करवाना.
To firmly follow our vows.
और अपने प्रतिज्ञाओं को कठोरता से पालन करना.
To not engage in adharmic activities.
अधर्मिक कार्यों में नहीं लगना.
And to very sincerely keep Krishna always within our hearts.
और अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को बनाए रखना.
By chanting his name.
उनके नामों का कीर्तन द्वारा. हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
obviously we try to say something about Bhagavad Gita.
स्वाभाविक रूप से हमने गीता के बारे में बोलने का प्रयास किया.
Please forgive me for any mistakes.
कोई गलतियों पे क्षमा करें.
It is my very sincere and humble prayer that in this glorious holy site under the immortal banyan tree of Jyotisar that we may all, in the mood of servant of the servant of the servant, dedicate our existence to following in the footsteps of Arjuna by keeping Krishna's words as our life and soul.
इस वटवृक्ष के नीचे हम ये संकल्प करें कि हम अर्जुन के पदचिन्ह में चलते हुए समर्पण की भावना से दासों के दास बने रहें.
Our beloved Guru Maharaj Srila Prabhupada was studying Bhagavad Gita once.
हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी भगवद गीता का अध्ययन करते.
He came upon one very important verse.
वो एक श्लोक के पास पहुंचे.
व्यवसायात्मका बुद्धिर एकेह गुरु नंदना बहुशका हिनंतश्च बुधायो व्यवसायना. Krishna says those who are on this path are resolute in purpose.
Krishna बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर है उनका निश्चय एक होता है.
Their aim is one.
उनका दृढ़ एक ही निश्चय होता है.
They are determined on the path of bhakti.
वो भक्ति के मार्ग पर सुदृढ़ रहते हैं.
He read the commentary of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur.
फिर उन्होंने विश्वनाथ ठाकुर की टीका को पढ़ा.
He explains that this verse means we must make the order of the spiritual master our life and soul.
इस श्लोक का अर्थ है कि हम अपने गुरु की आज्ञा को अपना प्राण बना देना है.
That verse gave Srila Prabhupada great strength.
और इस श्लोक से प्रभुपाद जी को बहुत शक्ति प्राप्त हुई.
To go to the Western world with no money and no support from anyone.
और किसी से पैसा नहीं और किसी से हेल्प मदद नहीं लेते हुए वो पश्चात देश में गए.
At the age of 70.
70 वर्ष की उम्र.
Because that was the order of his spiritual master.
क्योंकि उनके गुरु की ये आज्ञा थी उनके लिए.
And it was that faith.
और ये उनका श्रद्धा विश्वास.
Faith in the teachings of Sri Bhagavad Gita.
गीता की शिक्षाओं में विश्वास.
That has given all of us entrance into the world of pure devotional service.
और इस विश्वास से ही हम सबको शुद्ध भक्ति के दुनिया में प्रवेश मिला है.
So let us very sincerely beg at the feet of Srila Prabhupada, our Guru Parampara, and Bhagavan Sri Krishna, to give us faith and determination to never give up the principles of Bhagavad Gita.
हमें प्रार्थना करनी है प्रभुपाद जी से और पूर्व आचार्यों से कि हमको श्रद्धा दें जिससे कि हम भगवद गीता के सिद्धांत को कभी नहीं छोड़े.
Not only pray but beg.
न केवल प्रार्थना करें बल्कि भीख मांगे.
Beg for that mercy.
उस कृपा के लिए भिक्षा मांगे.
That we gain the strength, the determination and the faith to never give up the path of being the servant of the servant of the Lord and his devotees.
भक्तों के दासों के दास बनने के लिए मार्ग है उसको हम कभी त्याग नहीं करें इसके लिए श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ निश्चय दें.
Pray and pray and pray that we can bathe our mind in Gita and live by the Gita which is like a torch of knowledge in this world of darkness.
गीता जो कि ज्ञान शलाक के समान है अज्ञान के सागर में उसके अंदर हम जीवन बिता सके इसके लिए बार बार हम प्रार्थना करें.
Because it is a world of danger at every step.
ये दुनिया में हर कदम पर खतरा है.
Not only physically, emotionally, but spiritually as well.
ना केवल भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी.
We have to have this determination to survive on the path of bhakti.
भक्ति के मार्ग को बने रखने के लिए हमें दृढ़ निश्चय अत्यंत आवश्यक है.
And that determination comes by our prayer.
और ये प्रार्थना से हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है.
And by the determination that comes from our prayer.
और ये दृढ़ निश्चय भी जो है ये प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त होते हैं.
थैंक यू वेरी मच.
बहुत बहुत धन्यवाद.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Srila Prabhupada came here in the middle of the 1970s.
1970 के बीच में श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर आए थे.
At that time, one very influential politician of India offered Srila Prabhupada some land at Brahmasarovar.
कोई बहुत मशहूर एक राजनीतिज्ञ ने ब्रह्मसरोवर के पास प्रभुपाद जी को जमीन देने के लिए वचन दिया.
Then Prabhupada came in the afternoon here to Jyotisar.
और दोपहर को प्रभुपाद जी इसी स्थान पर ज्योतिसर में आए.
And he ordered his disciples.
और शिष्यों को आज्ञा दी.
We should have a temple here.
हमें यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए.
At Jyotisar.
ज्योतिसर में.
At the very place where Gita is eternally being spoken.
जहाँ वो स्थान जहाँ पर गीता हमेशा बोली जा रही है.
Gita is being spoken by Arjuna, by Krishna, right here now.
अभी यहाँ पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता बोल रहे हैं.
It is his eternal lila.
ये उनके नित्य लीला है.
Srila Prabhupada wanted a Bhagavad Gita university.
Srila Prabhupada ये भगवद गीता विश्वविद्यालय चाहते थे.
Here under the banyan tree in Kurukshetra.
ये इस वृक्ष के नीचे कुरुक्षेत्र में.
So that people from all over the world could come in this environment of Dharma Kshetra, Kurukshetra, and be influenced to hear Gita.
इससे कि लोग आ सकें इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में और गीता की शिक्षाओं को पढ़ सकें.
And change their lives.
और उनके जीवन परिवर्तन हो सके.
And just very recently, Srila Prabhupada's desire is one step closer to fulfillment.
और अभी बहुत ही कुछ समय थोड़े समय पहले श्री प्रभुपाद जी की इच्छाएं पूर्ति होने में एक कदम और आगे बढ़ गए.
Just a few minutes walk from this holy banyan tree, a very beautiful plot of land was offered to the lotus feet of Srila Prabhupada by the government of Haryana.
हरियाणा सरकार ने यहाँ से पास में थोड़े ही कदम दूर पर एक बहुत सुंदर जमीन का इलाका दिया है प्रभुपाद जी के चरण.
Cornerstone for Krishna Arjuna temple was established.
और वहाँ पर उसकी नींव स्थापना की गई.
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ अर्जुन तत्र श्री वजयोपूति ध्रुव नीति रमति रमणा. Wherever there is Krishna and Arjuna, wherever is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the great archer, there is certain to be victory.
यहाँ पर कृष्ण हैं, जो कि योगेश्वर हैं, और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ पर विजय सुनिश्चित है.
Opulence.
ऐश्वर्य.
Extraordinary power.
विशेष शक्ति.
Morality and auspiciousness.
नीति और मंगलमयता.
That is my opinion.
ये मेरा मत है.
These are the final words of Bhagavad Gita.
ये भगवत गीता के अंतिम शब्द हैं.
If we always remember Krishna, our lives will be victorious.
अगर हम कृष्ण को हमेशा स्मरण रखें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा.
So we have our Sukadev Maharaj, who has been here in Kurukshetra for many years.
हमारे सुखदेव महाराज हैं, कई वर्षों से कुरुक्षेत्र में निवास कर रहे हैं.
We have our Sakshi Gopal, who is also working very hard here in Kurukshetra.
Our Sakshi Gopal Prabhu bhi bahut mehnat kar rahe hain Kurukshetra mein.
The Singhal family donated this property for a temple.
Aur abhi jo mandir hai jahan par wo Singhal parivar ne donation diya hai building.
Heart of the city.
Jo ki shehar ke hriday mein beech mein.
You have all been there this morning.
Aap sab wahan subah the.
Radha Radha Kanta Mandir.
Iska naam hai Radha Radha Kanta Mandir.
And now, a beautiful plot of land given by government at Jyotisar.
And यहाँ पर अभी सरकार द्वारा ज्योतिसर में जमीन दिया गया है.
So let us pray that Srila Prabhupada's desire be fulfilled.
हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी की इच्छा पूरी हो.
And in our own way, let us all, in our own places, try to be what Srila Prabhupada wants us to be.
और हम अपने-अपने स्थानों में वो बनने का प्रयास करें जो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम बने.
That will be our greatest fortune.
ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा.
And we can offer the greatest benefit to the whole society.
और पूरे समाज और दुनिया को हम सबसे बड़ा लाभ प्रदान कर सकते हैं.
Thank you very much.
बहुत बहुत धन्यवाद.
Krishna is so great.
कृष्ण इतने महान.
In the time that I just spoke whatever little uselessness I spoke, Krishna spoke the whole Gita in this amount of time.
इतनी देर में जितना मैंने बोला उतनी देर में कृष्ण भगवान ने पूरी गीता बोली.
To establish the highest truth for the whole world for all time to come.
और पूरा परम सत्य आने वाले सब पीढ़ियों के लिए पेश किया।
श्री भगवान कृष्ण की, श्री कुरुक्षेत्र धाम की, श्री प्रभुपाद की, श्री भगवद गीता एज इट इज की।
राधानाथ महाराज की, श्री में चंद्रमौली स्वामी महाराज की, श्री में सुखदेव गोस्वामी महाराज की,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। So the teaching of Gita culminates in always remembering Krishna.
गीता की शिक्षाओं का सार है सब कुछ हमेशा कृष्ण को स्मरण
करना। Krishna taught us the process in this age of Kali is Hari Nam Sankirtan.
और कलयुग में विधि है हरि नाम संकीर्तन।
This is a glorious place.
ये बहुत यशस्वी स्थान है।
To perfectly execute the essence of Gita through performance of kirtan.